एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने राजनीतिक सोच पर बहुत गहरा असर डाला। एक ऐसी किताब जो करीब 225 साल पुरानी है लेकिन जिसके विचार आज भी गूंजते सुनाई देते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एडमंड बर्क की मशहूर किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। हिंदी में कहें तो फ्रांस में क्रांति पर विचार। ये आई थी 1790 में जब फ्रांस की क्रांति बस शुरू ही हुई थी।
हाँ, और देखिए ये किताब सिर्फ उस क्रांति का लेखा जोखा नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये इस पर सोच विचार है कि समाज कैसे बदलना चाहिए, परंपरा की क्या जगह है, और सिर्फ किताबी सिद्धांतों पर आधारित क्रांति कितनी खतरनाक हो सकती है।
इन बड़े बदलाव देखते हैं, पुरानी व्यवस्था और नई मांगों में वो जो टकराव होता है, तो बर्क के सवाल एकदम सामने आ जाते हैं, है ना?
बिल्कुल। क्या परंपरा और सुधार में कोई तालमेल जरूरी है? क्या सिर्फ तर्क के बल पर एक पूरे समाज को बिल्कुल नए सिरे से बना सकते हैं? ये सवाल आज भी उतने ही अहम है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इस किताब के लेखक एडमंड बर्क के बारे में जानते हैं।
हाँ।
कौन थे ये
एडमंड बर्क? इनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ था 1729 में, लेकिन इनका काम, इनका राजनीतिक जीवन वो ज्यादातर ब्रिटेन में बीता। ये एक बहुत माने हुए राजनेता थे, दार्शनिक भी थे और जबरदस्त वक्ता थे। करीब करीब 30 साल वो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे।
और इनकी खास बात थी है ना कि ये सिर्फ हवा में सिद्धांत बनाने वाले दार्शनिक नहीं थे।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे। जैसे आपने अमेरिकी उपनिवेशों का जिक्र किया, उन्होंने उनके अधिकारों का बड़ा जोरदार समर्थन किया था।
हाँ, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार उनके पारंपरिक हक छीन रही है।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, उनके खिलाफ महाभियोग चलाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हें लगता था हेस्टिंग्स ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है।
तो जमीनी राजनीति की उनको गहरी समझ थी।
जी बिल्कुल। और इसी अनुभव ने उन्हें फ्रांस की क्रांति पर एक अलग नजरिया दिया। दिलचस्प बात यह है कि देखिए, अमेरिका के लिए उन्होंने पारंपरिक अधिकारों की बात की, लेकिन फ्रांस की क्रांति का उन्होंने शुरू से ही विरोध किया।
हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? क्यों?
क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस की क्रांति नए अमूर्त सिद्धांतों पर टिकी है, मनुष्य के अधिकार, इस तरह की बातें। उन्हें लगा कि ये सिद्धांत समाज के सदियों पुराने ताने बाने को, उसकी संस्थाओं को, परंपराओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये रास्ता खतरनाक है।
और उनकी दूरदर्शिता तो कमाल की थी, उस वक्त जब यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिजीवी फ्रांस की क्रांति का स्वागत कर रहे थे।
हाँ,
बर्क ने तभी कह दिया था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, अराजकता होगी, हिंसा होगी, आतंक फैलेगा।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि इस उथल पुथल के बाद कोई फौजी तानाशाह आएगा जो व्यवस्था के नाम पर सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा।
और नेपोलियन ने आकर उनकी बात सच साबित कर दी।
हाँ, वाकई हैरत होती है।
जी
चलिए अब किताब पर आते हैं, फ्रांस में क्रांति पर विचार। ये लिखी कैसे गई? सुना है ये कोई ग्रंथ नहीं बल्कि एक चिट्ठी है।
हाँ, ये असल में एक बहुत लंबा खत है। बर्क ने एक नौजवान फ्रांसीसी रईस थे, चार्ल्स जीन फ्रैंकोइस डुपोंट, उनके एक सवाल के जवाब में लिखा था। उन्होंने बर्क से क्रांति पर उनकी राय पूछी थी।
अच्छा।
और एक और वजह थी शायद इसे लिखने की, ब्रिटेन में ही कोई भाषण हुआ था।
बिल्कुल, ब्रिटेन में एक जाने माने पादरी थे डॉक्टर रिचर्ड प्राइस। उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें फ्रांस की क्रांति की बड़ी तारीफ की और उसकी तुलना कर दी ब्रिटेन की 1688 की गौरवशाली क्रांति से।
ओहो।
और बर्क को ये तुलना पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं। वो बहुत असहमत थे, चिंतित भी थे। उन्हें लगा कि प्राइस जैसे लोग क्रांति के असली रूप और उसके खतरों को समझ ही नहीं पा रहे। तो उनका एक मकसद ये भी था कि ब्रिटेन को इस, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बुखार से बचाया जाए।
तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है, मुख्य तर्क क्या है?
सार यही है कि मनुष्य के अमूर्त अधिकार जैसे जो सिद्धांतिक नारे हैं, उनके आधार पर समाज में एकदम से हिंसक तरीके से बदलाव लाना खतरनाक है। बर्क समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखते थे जो धीरे धीरे बढ़ता है, विकसित होता है।
कोई मशीन नहीं।
हाँ, कोई मशीन नहीं जिसे आप चाहें तो पुर्जे खोलकर बदल दें और फिर से जोड़ दें। उनका मानना था कि एक टिकाऊ और न्याय वाला समाज वो विरासत में मिली चीजों पर बनता है। संस्थाएं हैं जैसे राजशाही, चर्च, कुलीन वर्ग, परंपराएं हैं, पीढ़ियों का जमा किया हुआ ज्ञान है, इसे आप कुछ दार्शनिकों के नए विचारों के लिए एकदम से खत्म नहीं कर सकते।
तो वो क्रांति की जगह धीरे धीरे सुधार चाहते थे।
जी बिल्कुल, क्रमिक सुधार।
आइए बर्क के तर्कों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, गौरवशाली क्रांति और फ्रांस की क्रांति की तुलना। बर्क ने इसे कैसे गलत बताया?
देखिए, डॉक्टर प्राइस का कहना था कि 1688 की क्रांति ने ब्रिटेन के लोगों को अपना राजा चुनने और हटाने का हक दिया। बर्क ने कहा, नहीं, ये गलत है। 1688 की क्रांति का मकसद राजा जेम्स द्वितीय ने, जो ब्रिटेन का पुराना संविधान और उत्तराधिकार के नियम तोड़े थे, उनको बचाना था।
अच्छा, बचाना था, नया कुछ बनाना नहीं था।
जी, ये एक तरह से अपनी विरासत को बचाने के लिए उठाया गया कदम था, एक रूढ़िवादी कदम।
ये तो बहुत अहम फर्क है। मतलब ब्रिटेन के अधिकार और आजादी बर्क के हिसाब से वो ठोस चीजें हैं, विरासत में मिली हैं, कानूनों में लिखी हैं।
हाँ, जबकि फ्रांस वाले बात कर रहे थे मनुष्य के अधिकारों की, जो बर्क को लगते थे कि ये तो बस हवा हवाई बातें हैं, अमूर्त सिद्धांत जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं।
और इसी से जुड़ा है उनका वो परंपरा और पूर्वाग्रह वाला तर्क, जो थोड़ा विवादास्पद भी माना जाता है ना।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस शब्द को सुनते ही सोचते हैं बिना सोचे समझे बनी राय या भेदभाव।
हाँ,
लेकिन बर्क का मतलब इससे अलग था। उनके लिए पूर्वाग्रह का मतलब था समाज का वो जमा हुआ अव्यक्त ज्ञान, वो आदतें, वो मान्यताएं जो पीढ़ियों के अनुभव से निकली हैं, जो शायद तर्क से ज्यादा भरोसेमंद हो।
मतलब ये एक तरह की सामूहिक सहज बुद्धि।
हाँ, कह सकते हैं। बर्क मानते थे कि ये परंपराएं, ये पूर्वाग्रह अक्सर किसी एक व्यक्ति के अकेले तर्क से ज्यादा सही साबित होते हैं, क्योंकि वो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। समाज उनके लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली जायदाद जैसा था, और हर पीढ़ी का फर्ज है कि वो इसे संभाले, थोड़ा सुधारे और अगली पीढ़ी को दे, ये नहीं कि उसे पूरी तरह तोड़ फोड़ दे।
और इसी तर्क से वो ब्रिटिश व्यवस्था की चीजों का बचाव करते थे, जैसे वंशानुगत राजशाही,
स्थिरता के लिए
अभिजात वर्ग,
सेवा और संतुलन के लिए,
और स्थापित चर्च,
नैतिक आधार के लिए। उनका कहना था कि ये संस्थाएं वक्त के साथ बनी हैं और समाज को बांधे रखती हैं।
ये वाकई एक अलग नजरिया है, परंपरा को सिर्फ बोझ नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत मानना। अच्छा, अब आते हैं उनके उस तर्क पर जहां वो अमूर्त अधिकारों और सिर्फ तर्क पर आधारित राजनीति की आलोचना करते हैं।
जी, बर्क का मानना था कि मनुष्य के अधिकार जैसे नारे सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं।
हाँ, आकर्षक तो हैं।
बिल्कुल, लेकिन जब आप उन्हें समाज की जटिल सच्चाइयों से काटकर लागू करते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं, खतरनाक भी। वो पूछते थे कि भाई असल अधिकार क्या है।
उनके हिसाब से क्या थे असल अधिकार?
उनके हिसाब से असल अधिकार वो हैं जो हमें समाज के अंदर मिलते हैं।
जैसे?
न्याय पाने का अधिकार, अपनी मेहनत का फल पाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। और ये अधिकार हमें कौन देता है? हमारी स्थापित संस्थाएं, हमारे कानून, ना कि कुछ दार्शनिकों की घोषणाएं।
और वो इस सोच के भी खिलाफ थे कि सिर्फ शुद्ध तर्क, मतलब रैशनलिज्म के आधार पर एक परफेक्ट समाज बना सकते हैं। रूसो जैसे विचारक उनके निशाने पर थे।
हाँ, उन्हें लगता था कि ये विचारक इंसान के स्वभाव और समाज के रिश्तों की उलझनों को समझते ही नहीं। उनके लिए राजनीति कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं थी कि आप फॉर्मूला लगाएं और नतीजा आ जाए।
इसी नजरिए से फिर उन्होंने फ्रांस की जो नई व्यवस्था बन रही थी उसका विश्लेषण किया होगा, नेशनल असेंबली वगैरह का।
जी, उन्होंने तो नेशनल असेंबली की बनावट पर ही सवाल उठा दिया, कहा कि इसमें कौन लोग हैं, अनुभवहीन वकील हैं, छोटे मोटे अधिकारी हैं जिन्हें राज चलाने का कोई तजुर्बा ही नहीं है।
और उनके फैसलों की तो उन्होंने धज्जियां उड़ाई, जैसे वो चर्च की संपत्ति जब्त करने वाला मामला।
ओहो, उस पर तो वो बहुत नाराज थे। उसे उन्होंने सीधे सीधे चोरी कहा, और सिर्फ चोरी नहीं, समाज की बुनियाद पर हमला। उनका तर्क था कि संपत्ति का अधिकार पवित्र है, अगर चर्च की संपत्ति सुरक्षित नहीं तो फिर किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती।
फिर वो कागजी नोट छापने वाली बात भी थी, असाइनेट।
हाँ, असाइनेट्स,
जब्त की हुई जमीन के बदले में कागजी नोट छाप दिए।
बिल्कुल,
बर्क ने तभी कह दिया था कि देखना, इससे भयानक महंगाई आएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और हुआ भी वही। और वो जो फ्रांस के पुराने ऐतिहासिक प्रांत थे उन्हें खत्म करके नक्शे पर स्केल रखकर नए ज्यामितीय डिपार्टमेंट बना दिए। उसकी भी उन्होंने आलोचना की, कहा कि यह समाज के स्वाभाविक ताने बाने को तोड़ने जैसा है।
उन्हें नए लोकतंत्र से भी डर था कि कहीं ये बहुमत की तानाशाही न बन जाए। खासकर संपत्ति वालों के लिए।
जी, और सेना का राजनीतिकरण, उस पर भी वो बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर सेना की वफादारी राजा से हटाकर असेंबली के लिए कर दी तो अनुशासन खत्म हो जाएगा, सेना फिर राजनीतिक गुटों का हथियार बन जाएगी।
बात यहाँ और भी गंभीर हो जाती है जब बर्क राजशाही के अपमान और आने वाले आतंक के दिनों की बात करते हैं। वो रानी वाला किस्सा काफी मशहूर है ना? हाँ, ये किताब का एक बहुत ही भावनात्मक और प्रसिद्ध हिस्सा है। बर्क जिक्र करते हैं अक्टूबर 1789 का, जब भीड़ वर्साय महल में घुस गई थी और राजा रानी को पकड़कर पेरिस ले आई थी। रानी मैरी एंटोनेट के साथ जो बदसलूकी हुई उस पर बर्क ने जो लिखा वो बहुत मशहूर हुआ।
क्या लिखा था उन्होंने?
उन्होंने लिखा, शिष्टाचार का युग चला गया है, अर्थशास्त्रियों और गणना करने वालों का युग आ गया है, और यूरोप की महिमा हमेशा के लिए बुझ गई है।
ये सिर्फ रानी के लिए दुख नहीं था?
नहीं, ये उससे ज्यादा था। ये उस सम्मान, उस तहजीब, उन अलिखित सामाजिक नियमों के खत्म होने का दुख था जो बर्क के हिसाब से ताकत को काबू में रखते थे, समाज को सभ्य बनाते थे।
और यहीं से वो अपनी वो डराने वाली भविष्यवाणी करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि ये जो पुरानी व्यवस्था और सम्मान टूट रहा है, इससे अराजकता फैलेगी, सत्ता का एक खालीपन पैदा होगा। तब कौन बचेगा? सिर्फ सेना, जो संगठित है, और आखिर में लोग शांति और व्यवस्था के लिए इतने तरसेंगे कि वो किसी मशहूर जनरल के पीछे चल पड़ेंगे,
जो फौजी ताकत से सबका मालिक बन बैठेगा।
बिल्कुल, यानी नेपोलियन। कमाल की राजनीतिक समझ थी उनकी।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से, जिन्हें हम आज भी याद रख सकते हैं?
पहला तो ये, समाज की जैविक प्रकृति, कि समाज एक जीती जागती चीज है, धीरे धीरे बढ़ता है, मशीन नहीं है जिसे आप एकदम से बदल दें। ये आज भी बड़े सामाजिक बदलावों के बारे में सोचते हुए ध्यान रखने वाली बात है।
दूसरा,
हाँ,
राजनीति में अमूर्त तर्क का खतरा। मतलब किताबी सिद्धांत ठीक हैं, पर जमीनी हकीकत और नतीजे ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ विचारधारा के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है।
तीसरा, परंपरा और पूर्वाग्रह का महत्व, बर्क वाले अर्थ में, कि परंपरा सिर्फ रूढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ियों का जमा किया हुआ ज्ञान है, और पूर्वाग्रह समाज की सहज बुद्धि हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां परंपरा और आधुनिकता में हमेशा एक खींचतान चलती रहती है।
चौथा, स्वतंत्रता और व्यवस्था का संतुलन। बर्क कहते हैं कि असली आजादी बिना नियम कानून, बिना नैतिकता के नहीं टिक सकती। सिर्फ बंधन तोड़ देना आजादी नहीं है, एक ऐसा ढांचा चाहिए जिसमें आजादी पनप सके। ये आजादी बनाम सुरक्षा वाली बहस से जुड़ता है।
जी, और पांचवा, क्रमिक सुधार की जरूरत, कि समाज में सुधार तो चाहिए पर वो धीरे धीरे हो, सावधानी से हो। क्रांतिकारी उथल पुथल अक्सर नुकसान ज्यादा कर देती है, धैर्य से विकास करना ज्यादा सुरक्षित है।
बर्क की लिखने की शैली भी बड़ी दमदार थी। उनकी किताब में कई ऐसी लाइनें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। कुछ उदाहरण देखें।
हाँ जरूर, जैसे ये वाली, समाज वास्तव में एक अनुबंध है, यह केवल जीवित लोगों के बीच ही नहीं बल्कि जीवित, मृत और जन्म लेने वालों के बीच भी एक साझेदारी बन जाती है।
इसका मतलब गहरा है, समाज सिर्फ हमारा नहीं, हम पर पिछली पीढ़ियों का कर्ज है और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्रांति इस पूरी कड़ी को तोड़ देती है।
बिल्कुल, फिर वो मशहूर लाइन, शिष्टाचार का युग चला गया है, अर्थशास्त्रियों और गणना करने वालों का युग सफल हुआ है, और यूरोप की महिमा हमेशा के लिए बुझ गई है।
ये सिर्फ पुराने जमाने की याद नहीं है, ये उन मानवीय मूल्यों, सम्मान, कर्तव्य, तहजीब, इनके खोने का डर है, जिन्हें आप सिर्फ नफा नुकसान में नहीं तोल सकते। बर्क को डर था कि इनके बिना समाज एकदम रूखा, अमानवीय हो जाएगा।
सही बात है। और एक और, लेकिन ज्ञान और सदाचार के बिना स्वतंत्रता क्या है? ये सभी संभावित बुराइयों में सबसे बड़ी है, क्योंकि यह बिना शिक्षण या संयम के मूर्खता, अवगुण और पागलपन है।
ये बड़ा सवाल उठाती है, क्या आजादी अपने आप में काफी है? बर्क कहते हैं, नहीं, अगर आजादी का इस्तेमाल करने वालों में समझ और नैतिकता नहीं है तो वही आजादी तबाही ला सकती है, उसे एक दिशा चाहिए। तो ये जो 18वीं सदी के विचार हैं, आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में इनका क्या मतलब है, कैसे लागू हो सकते हैं?
कई तरह से। जैसे राजनीतिक सुधारों की बात करें तो बर्क का संदेश है, जल्दबाजी मत करो, मौजूदा संस्थाओं को एकदम से मत नकारो, उनमें धीरे धीरे सुधार लाओ, इतिहास से सीखो, जमीन से जुड़े रहो।
और सामाजिक बदलाव के स्तर पर?
वहां उनकी सलाह होगी, समुदायों के साथ मिलकर काम करो, उनकी परंपराओं, उनकी समझ का सम्मान करो, बाहर से समाधान थोपने के बजाय अंदर की ताकत पर भरोसा करो। बदलाव तभी टिकता है जब वो समाज के अंदर से आए।
ये बात किसी संगठन या कंपनी पर भी लागू हो सकती है ना?
हाँ बिल्कुल, कोई नया बदलाव ला रहे हैं तो वहाँ के पुराने तजुर्बे, वहाँ की संस्कृति, लोगों के ज्ञान को अहमियत देना जरूरी है। एकदम बड़े फेरबदल के बजाय लगातार छोटे छोटे सुधार ज्यादा कारगर होते हैं।
और शायद निजी जिंदगी में भी?
हाँ क्यों नहीं, अपनी जिंदगी में एकदम रातों रात क्रांति लाने की कोशिश के बजाय हम धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं, अपने अनुभवों से, अपनी जड़ों से सीख सकते हैं। निरंतरता और धैर्य अक्सर बड़े धमाकों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए तो निरंतरता और बदलाव के बीच वो जो संतुलन साधने की जरूरत है, उस पर उनका जोर, और ये विचार कि स्वतंत्रता को भी फलने फूलने के लिए एक व्यवस्था, एक संयम चाहिए, ये आज भी उतना ही सच लगता है। समाज कितना जटिल है, इसे मानना और उसमें विनम्रता से सुधार की कोशिश करना।
और मेरे लिए वो राजनीतिक आदर्शवाद के खतरों के प्रति उनकी चेतावनी, खासकर जब वो आदर्शवाद जमीनी हकीकत और इंसान के स्वभाव को भूल जाए, और साथ ही विवेक, प्रूडेंस का महत्व, मतलब सोच समझकर, दूर तक देखकर कदम उठाना, ये शायद आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।